इंडियन आर्मी एंड बियॉन्ड विद मेजर पवन थपलियाल।
1 जनवरी 2010, ये उस टाइम की बात है जब मैं आईएमए से पास आउट होकर अपनी पहली यूनिट पे रिपोर्ट करने गया, तो मुझे कहा गया कि आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल में जाइए और वहाँ जो आपको पोस्ट दी गई है वहाँ पर सेटल हो जाइए। तो मेरे बटालियन हेडक्वार्टर से मेरी पोस्ट जाने तक का जो सफ़र था वो करीबन 9 दिन का था। उस बीच हर हाइट पे मुझे अलग अलग एक्लिमेटाइजेशन प्रोग्राम्स के थ्रू जाना पड़ता था। 9वें दिन जब मैं अपनी यूनिट के पोस्ट में पहुँचा तो मुझे प्लेटून कमांडर की उपाधि दी गई। उसमें मेरे बहुत सारे टास्क और चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ थी, जिसमें से एक था मुझे मेरे जवानों का ख्याल रखना था। 3-4 दिन हुए उस जगह से मैंने अपनी वाकफियत की। 4th दिन कहीं से एक कॉल आया और उस कॉल में जो एक आदमी मुझसे बात करना चाह रहा था वो बहुत घबराया हुआ था और बहुत ही इमोशंस में था। तो मेरा जो एक्सचेंज वाला सोल्जर था उसने मुझे कहा कि साहब आपसे कोई बात करना चाह रहा है। मैंने कॉल उठाया और मैं फ्रेश एकेडमी से नया नया आया था पहली बार पोस्टिंग पे, तो मैंने उनसे बात की, हाँ भाई क्या बात है, क्या हो गया, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो उसने मुझे कहा कि
साहब मेरा भाई आपके अंडर सर्व कर रहा है और उसके घर में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया है।
मैंने पूछा क्या हो गया, ऐसा क्या इंसिडेंट हो गया है? तो उसने कहा कि जो उनकी बेटी है
उसकी डेथ हो गई है।
तो पहले 20-30 सेकंड तो मैं सुन्न हो गया, क्योंकि आज तक मैंने ऐसी जो सिचुएशन थी कभी हैंडल नहीं करी, क्योंकि इससे पहले मैं एकेडमी में था, ट्रेनिंग करता था, उससे पहले स्कूल में था, उससे पहले घर पे था। तो मैं अचानक से स्तब्ध रह गया कि ये क्या हो गया। फिर उसने कहा कि सर
उसको जल्दी भेजिए,
और मेरा जो जवान था वो माइनॉरिटी, वो मुस्लिम कम्युनिटी का था, तो उसमें ऐसा था कि उन्हें मिट्टी देनी पड़ती है जो भी जिसकी भी डेथ हो जाती है, तो और वो आगरा का रहने वाला था। तो उसने कहा कि
साहब जब तक मेरा भाई यहाँ नहीं आएगा तब तक हम इसका क्रियाक्रम नहीं कर पाएंगे।
मैं 2 मिनट के लिए सोच नहीं पाया कि इसे जवाब क्या दूं। मैंने इसे कहा ठीक है, जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा मैं वो करता हूं आपके लिए, और मैंने फ़ोन नीचे रख दिया। फ़ोन रखते ही मुझे समझ नहीं आया कि मैं नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या करूं, क्योंकि ये स्थिति मेरे लिए बिल्कुल नई थी। मेरे दिमाग में आज तक ऐसा कुछ भी पहले घटित नहीं हुआ था। मैं प्लाटून कमांडर था, मेरे अंडर मेरे कुछ एक्सपीरियंस्ड जूनियर कमीशनड ऑफिसर्स थे जिन्होंने बहुत फ़ौज का समय देख चुका था। मैंने उन्हें कॉल किया और ये सिचुएशन बताई, तो उन्होंने मुझे कहा कि साहब मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। वो एक दूसरी पोस्ट पे थे जिस पर करीबन 1-1.5 घंटा आने जाने में लग जाता था, और उसी दिन पहले रात को फ्रेश स्नोफॉल हुआ था, तो करीबन आप लगा दीजिए कि डबल टाइम हो जाता है फ्रेश स्नोफॉल में अगर आप वॉक करें तो करीबन 2-2.5 घंटे के बाद JCO साहब मेरे पास मिलने आए, और मैंने उन्हें ये बात बताई कि ऐसा हुआ है और अब मुझे आप बताइए, गाइड करिए कि मैं क्या करूँ, क्योंकि जो जवान मेरा जिसके घर ये हादसा हुआ था वो एक ऐसी पोस्ट पे था जो कि पाकिस्तान से बहुत नज़दीक थी और उसके पास बहुत जिम्मेदारियां थी। तो मुझे डर लगा कि अगर मैं उसे ये बताऊं तो क्या पता वो अपना आपा ना खो बैठे, मेंटल स्टेबिलिटी ना खो बैठे और क्या करे, क्योंकि वो उसका और मेरा जो डिस्टेंस था वो करीबन 5.5-6 किलोमीटर यानी कि बर्फीली पहाड़ियों में 3-4 घंटे का डिस्टेंस था। तो मेरे जो एक्सपीरियंस्ड JCO साहब थे उन्होंने मुझे कहा कि साहब आप सबसे पहले कॉल कीजिए और उनको ये बताइए कि उनकी जो बेटी है वो बीमार है और जैसे ही जल्दी बर्फबारी ख़त्म होगी हम उन्हें छुट्टी पे भेज देंगे। उन्हें ये ना बताइएगा कि ऐसा हादसा हुआ है उनके घर पे। मैंने कहा ठीक है। मैंने फ़ोन उठाया, उन्हें फ़ोन लगाया और पहले उनके हालचाल पूछे, और जैसा कि सब आप जानते हैं जो सैनिक होता है वो एकदम हमेशा जोश में होता है, तो उन्होंने मुझे कहा
राम राम साहब, सब ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है।
तो मैंने उनसे कहा कि बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट आपके भाई का एक फ़ोन आया था, तो उन्होंने कहा कि जो आपकी बिटिया हैं उनकी थोड़ा तबीयत ख़राब है और वो आगरा के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जैसे ही बर्फबारी ख़त्म होगी मैं आपको तुरंत यहाँ से रवाना कर दूंगा। और आप लोगों को बताने के लिए मैं बता देता हूँ कि जिस पोस्ट पे मैं था वहाँ से निकलने के लिए हेलीकॉप्टर ही एकमात्र साधन है जब बर्फबारी शुरू हो जाती है, तो और हेलीकॉप्टर तब आता है जबकि पूरा आसमान साफ हो, बर्फबारी ना हो रही हो, और वो हमें नहीं पता चलता कि वो कब ऐसा होगा, वो कौन सा दिन आएगा। तो उन्होंने मुझे एज अ डिसिप्लिन सोल्जर कहा कि
साहब कोई बात नहीं, जब भी आप मेरे को बोलेंगे मैं पोस्ट से निकलूंगा और अपने घर जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
फिर मैंने फ़ोन रख दिया और मैं बहुत इमोशनल हुआ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अपने आप में ली कि अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो मैं क्या करूँगा स्थिति में। मेरा घर जो कि बम्बई में है और मैं कश्मीर में हूँ, अगर कोई हादसा हो जाए मेरे घर में तो मैं इससे कैसे उबरूंगा, मेरा नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। मैं बिल्कुल लॉस्ट सा हो गया था। फिर मैंने अपने JCO साहब से बात की, उन्होंने कहा कि साहब आप इनको तब बताइएगा ये जब वो यहाँ से निकल जाएं छुट्टी पे। मैंने कहा ठीक है, बोला क्योंकि ये स्थिति ऐसी है, ये जगह ऐसी है कि वहाँ पर आप किसी को भी इतना मेंटली कोई शार्प चीज़ें नहीं बता सकते जो कि उन्हें कोई दुखद भावना पहुँचा दें। तो उसके बाद जो मेरे JCO साहब थे वो अपनी यूनिट वापस चले गए। फिर 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बर्फबारी रुकी नहीं। हमने हेलीकॉप्टर आने के लिए कह दिया था बट स्टिल बिकॉज ऑफ वेदर हेलीकॉप्टर कुड नॉट कम। फिर JCO साहब का वापस मुझे कॉल आया, उन्होंने मुझे कहा कि
सर जैसा भी हो प्लीज़ मुझे जल्दी भेज दीजिए, मुझे लग रहा है कि मेरे घर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है।
मैं फिर परेशान हुआ, मैंने कहा कि क्या करें स्थिति में जबकि मुझे पता है कि उनके घर पे क्या हुआ है, उनका जाना बहुत ज़रूरी है बट मौसम ऐसा है, हालात ऐसे हैं कि वो वहाँ से जा नहीं पा रहे। बहुत कोशिश की, नीचे बटालियन हेडक्वार्टर में बताया लेकिन मौसम ख़राब तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर करीबन 4 दिन और बीते, 7वां दिन जब मौसम साफ़ हुआ तब हमें पता चला कि आज एक हेलीकॉप्टर आएगा और जितने भी लोग छुट्टी पे जाने वाले होंगे वो उसमें निकलेंगे। तो उन्होंने, मैंने उनको कहा आप अपना बैग पैक कीजिए और आप बटालियन हेडक्वार्टर की तरफ आइए जहाँ हेलीकॉप्टर खड़ा है। तो वो रात को निकलना शुरू हुए थे, मैं उन्हें देख रहा था पहाड़ी से जैसे ही वो नीचे से आ रहे थे और वो मुझसे मिलने वाले थे। तो मुझे अलग सी बेचैनी हो रही थी कि मैं कैसे मिलूं। मैं 21 साल का लड़का था उस समय और ये 42 साल के, और उनके घर ऐसा हादसा हुआ। और बीइंग अ फौजी आप इमोशंस या आप किसी को अपफ्रंट दिखा नहीं सकते ऐसे। तो वो जैसे ही आए मेरे सामने बिल्कुल उन्होंने ठोक के मुझे सलाम किया और कहा कि आप साहब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जैसे ही मेरे घर की स्थिति ठीक होगी मैं वापस आ जाऊंगा, यू डोंट वरी अबाउट एनी बॉर्डर सिचुएशन। मुझे अंदर बड़ा अजीब सा लगा कि जिस बंदे के घर में इतना सब कुछ हो गया हो वो फिर भी सोच रहा है कि मैं जल्द से जल्द वापस आऊँ और अपनी जगह वापस लूँ और अपनी मातृभूमि को डिफेंड करूँ, क्योंकि पहला कर्तव्य उसका ये है। तो मुझे उस समय एक्चुअल देशभक्ति की वैल्यू समझ में आई कि क्यों कोई भी बंदा जो भी भारतीय सेना का जवान है वो अगर बॉर्डर में खड़ा है तो उसके लिए मातृभूमि कितनी बड़ी एक रिस्पेक्ट की बात है और उसके पीछे कोई नहीं है। नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट फॉर अ सोल्जर एंड दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। फिर वो वहाँ से गए, मैंने उन्हें कहा कि आप जब आपका पूरा वहाँ पर काम हो जाए तब आप आइएगा, छुट्टी की टेंशन मत लीजिएगा। करीबन 1 महीना बीता, उन्होंने फ़ोन किया कि मैं आता हूँ अब, यहाँ पर समय हो गया है मेरा। तो जैसे ही वो आने लगे उनका, मैंने देखा कि वो नीचे से पहाड़ से ऊपर आ रहे हैं। फिर मुझे अजीब से बेचैनी हुई कि मैंने कैसे फेस करूँगा, क्योंकि इन्हें पता है कि मैंने इन्हें कहा था कि इनकी बेटी एडमिट है और ये हादसा मैंने इन्हें बताया नहीं था। जैसे वो ऊपर आने लगे मुझे फिर बेचैनी होने लगी, वो मेरे सामने आए, उन्होंने मुझे फिर सलूट किया और कहा कि साहब सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं अपनी पोस्ट पे जाने को बिल्कुल तैयार हूँ। उनके सामने तो मैंने उन्हें कोई इमोशंस और रिएक्शंस नहीं दिए, खाली उनकी पीठ थपथपाई और उन्हें कहा ओके साहब थैंक यू। पर जैसे ही मैं अपने कमरे में वापस आया और दरवाज़ा बंद किया, मुझे अचानक एक इमोशंस ऑफ सी आप बोल सकते हैं, उनसे मैं घिर गया कि ये कैसा कैसी ज़िंदगी है, क्या विरोधाभास है। समझ नहीं आ रहा था कि जिसके घर में ऐसा कुछ हुआ हो वो वापस आके फिर मुझे कह रहा है कि आप विश्वास रखिए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं वापस आ चुका हूँ और अपनी पोस्ट अब मैं संभालने जा रहा हूँ। और उस समय के बाद से मेरे जीवन में जो बदलाव हुए वो मैं आपको अपने आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगा।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट्स और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।